मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज 9 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अरुणा कौशिक ललितपुर उत्तर प्रदेश से, विनय कुमार मेरठ उत्तर प्रदेश से, सतीश वर्मा आपका गांव है फुलौना जिला है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और मनोरंजन भारती आपका जो गांव है वो है पीरपंती जिला है भागलपुर बिहार से। तो अरुणा विनय सतीश और मनोरंजन आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग अपने पिछले जो दो दिनों से जिस पर चर्चा करते आ रहे हैं उसे ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि इसमें ब्रेक देने से इसका जो तारतम्य है वो भंग हो जाएगा और उससे बात बनेगी नहीं। हालांकि करंट अफेयर्स अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोगों ने अभी मिस अभी तक नहीं की है तो उसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान न हो। तो आज हम लोग सिविल सेवा की तैयारी की जो रणनीति होती है उस पर बातें कुछ करेंगे लेकिन पहले थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक जो खबर है फ्रेंड्स वो महाभियोग की है। देखिए जब महाभियोग की आप तैयारी करेंगे तो महाभियोग की तैयारी के अब हमारे पास दो पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, क्यों लगाई जाती है, कैसे पूरे के पूरी उसका प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्री एग्जामिनेशन में इसी को आधार बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट है वो करंट जो घटना है महाभियोग से जुड़ी हुई उनको आधार बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है और वो भी मेंस में। जैसे आप पिछले लगभग एक साल से देख रहे हैं और इसकी शुरुआत तब से हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट के कुछ आंतरिक मामलों में जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर के सवाल उठाए। ये पहला अवसर था जब सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायमूर्ति न्यायाधीश पब्लिक में गए। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि नई नई चीजें हाईएस्ट कोर्ट को लेकर के सामने आ रही हैं, राइट? तो अब इससे जो जनता के दिमाग में जो न्यायालय की जो छवि थी, न्यायालय के प्रति जो विश्वास था, उस पर क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जनता का विश्वास इससे थोड़ा भी बाधित हुआ है तो इससे इसका समाज और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या एक प्रश्न इस तरह का भी बनता है कि क्या न्यायालय को इस तरीके के राजनीतिक मसलों में घसीटा जाना चाहिए या शामिल किया जाना चाहिए या विवाद का विषय बनाया जाना चाहिए। और जब हम न्यायालय को विवाद का विषय बनाए जाने के बारे में बात करते हैं तो याद रखिए कि हमारे दिमाग में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद होना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी संस्थान को पूरी तरह से क्लोज डोर में रखा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न अब इमर्ज हो रहे हैं न्यायालय से संबंधित जिन पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए अभी तक खासकर सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट को लेकर के जो क्वेश्चंस बनते थे, आप अगर पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उनका संबंध ज्यादातर न्यायिक सक्रियता से होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो इस पर आप थोड़ी सी अपनी नजर रखिएगा। मित्रों एक जो खबर थी न्यूज रेडियो में वो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों के बाद नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होगी खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको केवल सतर्क कर रहा हूं और इस मायने में कि जब भी भारत नेपाल के संबंधों को लेकर के आपको कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने को मिलते हैं तो आप उन्हें छोड़ मत दीजिएगा। आप उन्हें बकायदे पढ़िएगा, और अच्छा होगा कि आप उनकी क्लिपिंग्स भी रख लीजिए ताकि जब यात्रा पूरी हो जाए और पूरी होने के बाद के जब आउटकम्स जो रिजल्ट होंगे हमारे सामने आ जाएं, तो फिर हम एक दृष्टि विकसित कर सकें भारत नेपाल संबंधों को लेकर। राइट मित्रों, आज के दैनिक भास्कर के एडिटोरियल में एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, और खासकर रुपए के गिरते हुए मूल्य पर। आप देख आपने न्यूज में सुना है कि किस तरह से रुपए की तुलना में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत काफी गिरी है। ये आज का एक अच्छा विषय हमारे करंट अफेयर्स का हो सकता था, लेकिन मैं उसे अभी ले नहीं रहा हूं। मैं आपको ये एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड करा रहा हूं आज के प्रेस क्लिपिंग्स में, आप इसको देख लीजिएगा। और इस एडिटोरियल कमेंट्स के दो तीन अलग अलग पोर्शन पढ़कर सुना रहा हूं, स्पेशली पढ़कर सुना रहा हूं। ये होमवर्क है आपके लिए अगर आप चाहें तो। और होमवर्क इस मायने में कि ये लिखे हुए अक्षर हैं, अब आप कोशिश कीजिए इन्हें समझने की, एक्सप्लेन करने की कि ठीक है जब आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा या प्रेस क्लिपिंग से जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी बात कि ये क्या कह रहा है, लेकिन क्या आप उसे एक्सप्लेन कर सकेंगे? एक्सप्लेन अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको सही में समझ में आया है, या यूं कह लीजिए कि अब उस तरीके से समझ में आया है जिस तरीके से सिविल सर्विस में समझ में आना चाहिए। और स्पेशली जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनसे मैं खासकर ये बात कहूंगा, जोर देकर कहूंगा, या यूं कह लीजिए कि आदेश देते हुए कहूंगा कि वो हर हालत में इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन सारे इस तरह के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से यहां क्लास में समझाया गया है। और अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पिंड मत छोड़िए, आपको नोट्स भेजे गए हैं, आप देखिए बकायदे डॉलर बनाम रुपए को लेकर के एक सेपरेट पूरा का पूरा एक पेज दिया गया है, आप बकायदे उस पेज को समझने की कोशिश कीजिए, लेक्चर को याद करने की कोशिश कीजिए और समझिए। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके और मित्र होंगे जो यहां क्लास में आए होंगे उनसे समझिए, अगर वो भी नहीं हो तो किसी भी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से टीचर से समझिए, लेकिन समझिए। जहां तक मैं समझता हूं कि क्लास स्टूडेंट्स को इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अभी मैं अब फिलहाल आपको वो दो तीन जो पोर्शंस है वो अलग से पढ़कर सुना रहा हूं, और बेहतर होगा कि आप इसको अपने प्रेस क्लिपिंग्स से जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उससे मैच भी कर लें। देखिए इस एडिटोरियल कमेंट्स की तीसरी लाइन है, फरवरी 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 67.17 तक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर पाबंदी लगाने के ऐलान के बाद यह और भी गिर सकता है। देखिए बात आपकी समझ में आ गई, यहां पेच यह है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के विरुद्ध पाबंदी लगा देंगे तो इससे ऐसा क्या हो जाएगा कि रुपया और ज्यादा गिर जाएगा, यह आपको समझना होगा, ये फार्मूला है, सूत्र है, उस कनेक्शन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सेकेंड है, ये मैं आपको तीन दे रहा हूं जो आपको अलग अलग समझना है। दूसरा है अमेरिकी पाबंदी का सीधा असर तेल उत्पादन पर होता है, एक तरफ तेल के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ डॉलर मजबूत होता है। अब आपको यहां दो तथ्य मिल रहे हैं कि क्या कारण है कि अमेरिका जब पाबंदी लगाता है तो उससे तेल का उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित हो जाता है, और सेकेंड पॉइंट कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो डॉलर और मजबूत हो जाता है, ऐसा क्यों होता है यह आपको जानना है। पढ़ने से तो आपको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन क्यों प्रश्न कीजिए कि भाई ऐसा होता क्यों है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट है, देखिए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 70 तक जाने वाली है, मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 70 तक जाने वाली है। इस गिरावट से जहां निर्यातकों की चांदी है वहीं आयातकों की सांसत है, बड़ी दिक्कत चालू खाते के घाटे के स्तर पर होने वाली है और स्पष्टतः वह बढ़ेगा। अब आप देखिए कि अभी तो 67.17 रुपीज है, यह 70 तक गिर सकता है रुपए की कीमत, तो इस पर वो दे रहे हैं कि इससे जो हमारे निर्यातक हैं उनको लाभ होगा, और जो आयातक हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो अब बताइए कि क्यों लाभ होगा और क्यों नुकसान होगा। और इसके बाद इसी का जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा चालू खाता है उसका घाटा बढ़ेगा। घाटा बढ़ेगा, क्यों घाटा बढ़ेगा, चालू खाते से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों ऐसा होगा। तो मित्रों इनको आप समझने की जानने की कोशिश कीजिए। और सच पूछिए तो सिविल सर्विस की तैयारी का जो तरीका होता है फ्रेंड्स वो यही होता है कि आप चीजों को केवल पढ़ कर न छोड़ें, समझ कर छोड़ें, राइट। अब मैं मित्रों मुख्य अपने आज के विषय पर आता हूं और वह है सिविल सेवा की तैयारी की रणनीति को लेकर। मैंने आपको कल कट ऑफ मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से बता दिए थे और सभी कैटेगरी के बता दिए थे। आप सब ने अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने दिमाग में वो कट ऑफ मार्क्स दर्ज कर लिए होंगे और नो डाउट कि आप सब ने अपना अपना टारगेट भी फिक्स कर लिया होगा। लेकिन मैं यहां एक सजेशन आपको देना चाहूंगा और सजेशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स आता है मान लीजिए 53%, थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टारगेट 53% ही रखना है। मित्रों ये गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले साल का जो कट ऑफ मार्क्स था उससे भी मतलब उससे पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, ये तो अभी की है तो उसको कह लीजिए, पिछले साल वो 58% था, 58% यानी कि 58% तक कट ऑफ मार्क्स गया है, तो इस बार 53% है तो 5% कट ऑफ मार्क्स गिरा है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि कट ऑफ मार्क्स अगले साल फिर 58% चला जाए, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन तो आप देख रहे हैं ना। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस टारगेट को लेकर के चले कि आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन प्री एग्जामिनेशन। और ये जो मैं 60% की बात कर रहा हूं ये जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। आपको मालूम है कि जो सी सेट का पेपर है वो तो केवल क्वालिफाइंग है, तो आपको थोड़ा सा हायर टारगेट रखना होगा, हायर टारगेट। और इसमें फिर देखिए कि अगर हम मेंस के कट ऑफ मार्क्स को देखें और उसमें हम इंटरव्यू को भी मिला दें, चलिए ज्यादा हम आंकड़ों को इकट्ठा नहीं करते हैं, है ना, क्लियर क्लियर चीजों को लेकर के चलते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसका कट ऑफ मार्क्स हम 50% लगा लेते हैं, मोटे तौर पर 50% 2025 टोटल होता है, राइट। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं क्योंकि हाईएस्ट स्कोर है मित्रों, इसलिए मैं जनरल कैटेगरी को लेकर के चल रहा हूं। 1006 ये इस बार के कट ऑफ मार्क्स है, 2025 का पेपर होता है। अगर इसमें 1012.5 होता तब आप मान के चलते कि वो एग्जैक्ट 50% है, लेकिन चलिए 1006 है, 5.5 नंबर कम है, 6 नंबर, तो हम मान लेते हैं चलिए कि ये पूरी तरह से 50% है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉइंट से। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 50% स्कोर करेंगे तो 50% स्कोर करने पर आपका लिस्ट में बिल्कुल आखिरी में नाम आएगा, बिल्कुल आखिरी में। यानी कि अगर आप अपना नाम ऊपर चाहते हैं तो आपको 50% से अधिक स्कोर करना होगा। तो ऊपर का स्कोर कितना अधिक होगा अभी हम उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि समय उतना नहीं है कि हम उसका भी विश्लेषण करें। अभी मैं केवल आपको यह बताना चाहूंगा कि जब हम 50% स्कोर करने का प्लान बनाते हैं, चलिए हम मिनिमम प्लान बना रहे हैं, तो मित्रों ये 50% आप कैसे लाएंगे। देखिए 50% लाना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। नो डाउट आप इंटरव्यू में 50% ला सकते हैं, मिल जाएंगे इंटरव्यू में। अगर आप थोड़ा सा भी सतर्क होंगे तो आप 60% ले आएंगे, और आपको 60% इंटरव्यू में लाने का सोचना ही चाहिए, उससे कम में मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं अभी क्यों गड़बड़ हो जाएगा यही बता करके बात अपनी खत्म करूंगा। जो आपका ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग में भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मोर देन 50% स्कोर करें, मोर देन 50%, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में भी 50% का प्लान करेंगे, आप ऐसे में भी अगर आप 50% का प्लान करेंगे, तो याद रखिए कि फिर जो जनरल स्टडीज है उसमें आप 50% का प्लान करके आप 50% स्कोर नहीं कर सकते। जनरल स्टडीज में आपको हमेशा अच्छे से अच्छे स्कोर के तहत भी जो मार्किंग है वो 45% के आसपास रुक जाती है, और सबसे बड़ा हिस्सा जनरल स्टडीज का है, 4 पेपर, लेकिन जो फोर्थ पेपर है एथिक्स का नो डाउट कि वो थोड़ा सा बेहतर होता है। तो अब जब यहां आप 40-45% में रुक रहे हैं, यस 40-45% में यहां आप रुक जाएंगे, तो फिर इसको कवर कहां से करेंगे, इसकी क्षति की पूर्ति कहां होगी? तो इसकी क्षति की पूर्ति होगी मित्रों तीन जगहों पर। नंबर एक एसे का पेपर, दूसरा इंटरव्यू, और तीसरा आपका ऑप्शनल, यानी कि इनमें आपको 60% प्लस स्कोर करना है, जो उतना आसान काम नहीं है। तो ये मैंने आपको रणनीति की बहुत ही सामान्य सी बातें अभी आपको बताई हैं मित्रों। आगे हम लोग इस पर फिर बात करेंगे, वक्त हो चला है इसीलिए इसको अब यहीं समाप्त करते हैं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप अपने अपने ढंग से देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से पांच मित्रों के नाम हैं: अशोक भवसार, चंदन सिंह कुंवर, हिमांशु शर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, हरीश वेलकर और रेखा फिरोजपुर पंजाब से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।